एक रियलिटी तक हम पहुंचते हैं और वो ये कि हमारे अंदर कई इंसान छुपे हुए हैं, हम लोगों के अंदर कई इंसान छुपे हुए हैं। बहुत कोई मुश्किल काम लगता है कि कोई इंसान अपने आप को इतना कुरेदे कि उस असली वाले इंसान तक पहुंच जाए। एक दो मिसालें इसकी अर्ज करूंगा। कुरान करीम ने इंसान की इस मुश्किल को बयान किया है, फरमाया खुदा ने मुसा ने इंसान अला नफ्स ही बसीरा वलौ अलका माअज़ीरा, इंसान अपने नफ्स के ऊपर बसीरत रखता है गरचे उज़्र पेश करता रहता है, उज़्र पेश करता रहता है। तो इंसान के साथ जिंदगी में क्या होता है, इंसान के साथ जिंदगी में ये बहुत होगा कि वो एक दावा करेगा, अपने आप को उस दावे की जगह तक पहुंचना देखना चाहता है, लेकिन अगर अपनी गहराई में जाकर टटोले अपने आप को तो एक्चुअली वो नहीं है जो वो अपने आप को देखना चाह रहा है या दिखाना चाह रहा है, वो इंसान नहीं है। लेकिन बहुत कम इंसान होंगे जो इस गहराई तक पहुंचकर अपने आप को टटोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा क्यों वो नहीं जाएंगे इतनी गहराई में, दो वजह से। पहली बात तो मुश्किल काम, इंसान की सहल पसंद तबीयत ये कहती है कि वो इतनी गहराई में और इतनी मुश्किल में क्यों जाए। दूसरी बात यह कि अगर वो इस बात को रियलाइज कर ले कि मैं दो इंसान हूं तो उसके सामने एक और चैलेंज आएगा, तो दूसरे वाले को सही कैसे करूंगा, और इनमें से जो असल है वो कौन सा है, वो जो अंदर है। इसका मतलब है अंदर वाले को चेंज करना उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो इन वजूहात की बुनियाद पर वो कभी नहीं कुरेदेगा इसे, वो कभी इस काम को कोशिश नहीं करेगा कि वो अपने अंदर को कुरेद कर ये समझने की कोशिश करे कि वो जो मेरा असली छुपा हुआ इंसान है वो कौन है। अच्छा जितने भी आप आयात करीमा कुरान करीम की कयामत के हिसाब से देखें या मिसाल के तौर पर उसकी निशानियों के हिसाब से देखें, रिवायात के अंदर देखें, तो वहां पर आपको एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी, यौम तुबलस सराहिर, वो दिन जब राज खुल जाएंगे, हुस्सिलत मा फिस सुदूर, जो सीनों में छुपा हुआ हुआ है वो जाहिर हो जाएगा, अलकद माफीहा व तखल्लत, जमीन के अंदर जो कुछ है वो उगल देगी। सही, ये क्या उगलेगी, गोल्ड कितना है, मिनरल्स कितना है, असल ये गोल्ड और मिनरल्स जिनके ऊपर हम मर रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर उनकी बारिशें हो रही हैं, ये कार्बन का ढेर जिसको हम डायमंड कहते हैं इसकी दूसरी प्लैनेट्स में बारिशें हो रही हैं, इसको उगलने का क्या फायदा होगा, ये तो अबंडेंस में मौजूद है कायनात के अंदर, ये तो उसकी कोई कीमत भी नहीं है। या मसलन खुदा ने मुताल का फरमाता है कि मा तस्कुत मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, वाकई दरख्तों के पत्तों का जिक्र है यहाँ कि जो दरख्त के पत्ते जमीन पे गिरते हैं खुदा उनको जानता है, जो जमीन से निकलता है उसको जानता है, जो आसमान से गिरता है उसको जानता है, ये वाकई इनका जिक्र है, पानी और पत्तों का जिक्र है, तो बेहर इसकी क्या कीमत है, इसका मतलब है जिक्र किसी और चीज का है। तो ये जो फरमा रहे कि राज सीनों के खुल जाएंगे, या मसलन जो कुछ सीनों के अंदर है वो हासिल हो जाएगा, ये जमीन अपने खजाने उगल देगी, जाहिर इसका ताल्लुक मिनरल माइंड से नहीं है। अगर मिनरल माइंड से नहीं है तो फिर किससे है, फिर हम अपने तौर पर सोचते हैं कि भाई इस पूरी कायनात में मखलूक कौन है, तो जो सबसे बड़ी मखलूक है वो इंसान है, क्योंकि इसके राज नहीं है क्या। तो हम सबको एक बात समझ में आती है कि जो कयामत है ये बहरहाल उस छुपे हुए इंसान की जिंदगी है, न उस इंसान की जो जाहिर में है, हम सब इस बात को जानते हैं। इमाम का कौल मशहूर कौल फरमाया कि वो लोग सो रहे हैं जब मरेंगे तो जाग जाएंगे, तो ये जो मरते हुए जागेंगे तो ये क्या देखेंगे, जाहिर है कि जमीन के मायने में नहीं देखेंगे, ये जो मरेंगे और जागेंगे तो ये अपने सरापा को देखेंगे जो अंदर बैठा हुआ है। तो क्या तैयारी, कयामत की तैयारी जवाहिर को संभाल क्यों होनी है, क्या मौत की तैयारी जवाहिर को संभाल क्यों होनी है, कौन कह जाए इसे, मैं इसको संभाल के क्या मौत की तैयारी कर सकता हूं कि मैं आपके सामने कैसे डिलीवर करूंगा, जाहिर से नहीं हो सकती। क्या मैं मौत की तैयारी उस इल्म को बढ़ा के कर सकता हूं सिर्फ जो मेरे दिमाग के अंदर है, जिसका मेरे अंदर से कोई ताल्लुक नहीं है, जाहिर के नहीं हो सकती, क्योंकि मौत की तैयारी के लिए मुझे अंदर काम करना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि अगर हम अपने अंदर जाकर इस बात को नहीं खोरेदेंगे कि हम हैं कौन, तो मौत की तैयारी कौन सी होगी, फिर इसका मतलब इससे मौत की तैयारी नहीं हो पाएगी। अच्छा तो फिर ये जो रोजा नमाज है और इबादत है ये सब क्या है, ये वो जाहिर है जो हमें संभालना ही संभालना है, ये हमारे पर वाजिब है, लेकिन इन सबका काम भी क्या है, तो हम सबको पता है इन सबका काम भी है कि ये हमारे अंदर को संभाले। तो मिसाल के तौर पर जो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं खुदा ने कुरान करीम में, बाबा फरमाए नमाज इकामा करो, नमाज इकामा करो, तो कहते हैं इकामा सलात क्या है, हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं इकामा सलात ये है कि नमाज के पीछे एक कल्चर है, वो कल्चर आपके ऊपर आएगी या नहीं आएगी, अगर वो कल्चर नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन आप नमाज का इकामा नहीं कर रहे हैं। خود بخود ہم لوگ تھوڑے سے ان چند منٹس کی گفتگو سے ایک بات تک سمجھ پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ظواہر ہیں، ایک اندر بھی ہے، اور جو کچھ اصل دنیا اس دنیا کے بعد ہے وہ اندر والا انسان ہے، اس کو کتنے لوگوں نے کریدا ہے کہ وہ انسان کون انسان ہے. اب چند مثالوں سے، ایک دو جملوں سے یا پوائنٹ سے اس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اندر والا انسان بعض اوقات کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہاں سے پکڑیں کہ وہ اندر ہے کیا. امام نے ایک قول ارشاد فرمایا، انسان جو کچھ بھی اپنے ضمیر کے اندر رکھتا ہے وہ دو جگہ پہ ظاہر ہوگا. دو کو میں پوائنٹ کر رہا ہوں، امام نے دو کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن دو پوائنٹ فرمائے تھے. تو انہوں نے فرمایا صفحات وجہ ہی، کہ وہ اپنے چہرے کے صفحوں پر یعنی چہرے کی تہوں میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دکھائے گا. فلکات لسان ہی، زبان کے فلکات کو کیا کہنا چاہیے، زبان غیر ارادی طور پہ لڑکھڑا جاتی ہے، اس زبان کے لڑکھڑانے میں وہ کبھی اپنے اندر کو دکھائے گا. تو امام نے فرمایا کہ کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو چھپائے، دو جگہ پہ اپنے آپ کو دکھائے گا، صفحات وجہ ہی اور فلکات لسان ہی. اب یہاں پر اس حدیث کو اگر ایک اور حدیث سے ملائیں جو بہت ہی خوبصورت میننگ دیتی ہے ہمیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس انسان کو جو اندر بیٹھا ہوا ہے پکڑنا کس طرح سے ممکن ہو پائے گا. ہم کم از کم تین انسانوں کو اپنے اندر بنا پائیں گے بہت آسانی سے، یہ مشکل کام نہیں ہوگا. تین انسانوں کو ہم اپنے اندر بہت آسانی سے دیکھ سکیں گے. ایک وہ انسان ہے جو ہمارے اعضاء و جوارح میں ظاہر ہو رہا ہے، ایک وہ انسان ہے جس کو ہم اپنے اعضاء و جوارح کے پیچھے دوسروں کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اور ایک تیسرا انسان ہے جو اصل میں ہم ہیں، شاید خود بھی نہ جانتے ہوں، شاید خود بھی نہ جانتے ہوں. یہ کہاں سے محسوس کر رہا ہوں، روایت بڑی خوبصورت ایک روایت ہے. اب ممکن ہے کوئی کہے اتنی خوب کہ اس کی خوبصورتی ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اگر تھوڑا سا اس میں تعامل فرمائے، امام نے فرمایا کہ ضمیر وہ ہے جو تم نے لوگوں سے چھپایا ہے، خفی وہ ہے جو تم سے بھی چھپا رہ گیا ہے. صحیح، ایک میرے اندر ہے جو میں نے لوگوں سے چھپایا ہے، ایک وہ میرے اندر ہے جو مجھ سے بھی چھپا رہ گیا ہے. صحیح، تین بن گئے. ایک میری پریکٹسز کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو پریکٹسز کے پیچھے میں چاہتا ہوں کہ لوگ یوں دیکھیں جبکہ میں وہ نہیں ہوں، اور ایک وہ میرا تیسرا ہے جو خود میں بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے. صحیح، اب میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، مرنے کے بعد کون سا ظاہر ہوگا؟ جو میں نے پریکٹسز میں دکھایا ہے یہ تو چھپا ہی نہیں ہے، اس کو تو ظاہر ہونے کا کوئی کوشچن نہیں ہے. جو میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں ایکچولی تو ہے ہی نہیں وہ، تو کون سا ظاہر ہوگا؟ وہ جو اندر ہے جو مجھ سے بھی چھپا ہوا ہے، ظاہر تو اس کو ہونا چاہیے، ورنہ وہ جو بیچ والا ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا. مثال فرض کریں، اگر میں دو جملے ایسے بولوں جس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت متقی ہوں اور میں اتنا متقی نہیں ہوں مثلاً، تو یہ تو قیامت کے دن ظاہر نہیں ہوگا، چونکہ تو کچھ ہے ہی نہیں اصلاً، یہ تو فیک ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے سوائے میرے کہنے کے یا میری نیت کے. اب جو رہ گیا وہ کون ہے؟ وہ ہے جو میں اصل انسان ہوں اندر کا بیٹھا ہوا. تو میرا اپنے خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی محنت مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی اس مرحلے کے بعد کہ الحمدللہ ہم تھوڑے بہت دیندار ہو گئے ہیں اور ظواہر کو سنبھالنا جانتے ہیں، وہ اس پر آئے گی کہ وہ جو اندر چھپا ہوا ہے وہ اصل میں کون سا انسان ہے، اب اس کی کیا پرائرٹیز ہیں، وہاں سے ویلیوز ساری سیٹ ہوں گی. اب اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی نے آگے آنے والے زمانے کے انسانوں کو بیان کیا اس کے اندر، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب انسان کو اگر دولت لینی ہوئی تو وہ دو چیزوں پہ مجبور ہوگا، یا وہ غصب کرے گا یا وہ بخل کرے گا. اگر غصب نہ کرے، بخل نہ کرے تو دولت اس کے پاس نہیں آئے گی. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر وہ عزت لینا چاہے گا تو اس کو دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا اس کو عزت کے لیے اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کرنی ہوگی، اور عزت کے لیے اس کو دین سے باہر نکلنا ہوگا. اچھا، اب امام نے فرمایا کہ اب اگر کوئی انسان اس پہ صبر کر لے کہ وہ غصب کر کے اور بخل کر کے دولت لے سکتا تھا اور اس نے صبر کیا کہ میں دولت مند نہیں بننا چاہ رہا، میں غریب سے ہوں، اور وہ لوگوں کے سامنے دین کو چھوڑ کر اور خواہشات کی پیروی کر کے عزت لے سکتا تھا، اور وہ اس بات پہ خاموش ہو گیا، خوش ہو گیا کہ نہیں ٹھیک ہے میں لوگوں کی نظروں میں بے عزت صحیح ہوں، اور ایک تیسرا پیرامیٹر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا اس کو 50 صدیق کا ثواب دے گا، 50 صدیق کا ثواب دے گا. اچھا، اب اس حدیث سے अब मैं अपने पॉइंट में इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, इस आदमी को अपने अंदर तक के जमीर को कन्विंस करना पड़ेगा उस 50 सिद्दीक का सवाब लेने के लिए। अंदर तक के जमीर को कन्विंस करना पड़ेगा किस बात पे, कि वो बुखल ना करे, गस्ब ना करे और खुश रहे जबकि लोग उसको फकीर कह रहे होंगे, जबकि लोग उसको फकीर कह रहे होंगे। अच्छा, इसके मुकाबले में क्या होगा? इसके मुकाबले में एक वो होगा जो गस्ब कर लेगा और बुखल कर लेगा ताकि मेरे पास दौलत आए, और इसके मुकाबले में वो इंसान होगा जो गस्ब नहीं करेगा, बुखल नहीं करेगा लेकिन खुश भी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। तो क्या होगा, वो गस्ब तो नहीं किया उसने, बुखल तो नहीं किया, खुश क्यों नहीं है? वो इस बात पर कोड़ रहा है कि दूसरों के हाथ में बिलाकर दौलत है और मेरे पास नहीं है, तो वह इस पर कोड़ रहा है। तो क्या वो जुर्म कर रहा है? नहीं, जुर्म नहीं कर रहा है, गस्ब नहीं कर रहा है, बुखल नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस पर कोड़ जरूर रहा है कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये जो कोड़ रहा है ये किस बात की निशानदेही कर रही है? इसका अंदर का इंसान अहले आखरत नहीं है, इसके जवाहिर अहले आखरत हैं, आमाल अहले आखरत हैं, अंदर वाला अहले आखरत नहीं है। अभी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि अंदर वाले को अहले आखरत कर लीजिए, ये पॉइंट है जो इस हदीस से नजर आ रहा है। अब अगर मैं और आप किसी चीज पे मेहनत करना चाहें तो इस मेहनत को कैसे अंजाम दें? पहला रिजल्ट ये निकालना चाहूंगा कि हम कब वो टाइम निकालें जब अपने आप को कुरेद सकें, और ये काम हम कैसे कर सकते हैं? जो मुझे समझ में आता है, अगर हम खुद कलामी में आ जाएं, अगर हम खुद कलामी में आ जाएं और अपनी नियत को खुद ही कुरेद कर पकड़ना शुरू करें, तब शायद हम इस अंदर वाले इंसान को संभालने के काबिल हो सकते हैं। क्या हम खुद अपने चेहरे के तगैयुर को पकड़ पाएंगे? क्या हम अपने दिल के अंदर उठी हुई एक इस बात पे कि दुनिया का कोई नुकसान हुआ है इस पर गौर करेंगे कि ये क्यों निकली थी? मसलन अगर आपने मेरे साथ कोई ऐसा काम किया जो मुझे लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है और मैं ये फील कर रहा हूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि आपने मेरी इंसल्ट की है, क्या इसमें ये पॉइंट नहीं है कि मैं अपने आप को ज्यादा अहमियत दे रहा हूं? क्या हम लोग इतना डीप जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो अंदर वाला इंसान कौन कुरेज पाएगा? फिर तो जो रिजल्ट निकलेगा वो ये कि अजीजान मोहतरम, अगर हमें अपने ऊपर वाकई मेहनत करनी है और हमें अपने आप को किसी काबिल बनाना है तो हमें इस गहराई में जाना पड़ेगा। अगर हम इस गहराई में चले गए और अपने आप को समझने की कोशिश की और अपनी खामियों और खूबियों को समझ गए और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमारे पास इम्कान है कि हम चूंकि उस रास्ते पर होंगे तो हमें निजात मिल जाएगी। अगर हम खुदा न करे नहीं भी संभाल पाए तो कम से कम रास्ते पर तो होंगे तो निजात मिल जाएगी। और ये मैं फाइनली इसको इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये जितनी भी दुआएं हम कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इमाम की नुसरत की सआदत दे और उसकी तैयारी हम सबको नसीब कर दे, अल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, ये जो तैयारी होगी क्या होगी? यानी अपने तौर पर मैं सोचता हूं कि मैं बहुत ज्यादा ताकत जमा करूं या बहुत ज्यादा पैसा जमा करूं या बड़ा लश्कर बनाने की कोशिश करूं तो क्या ये वो तैयारी होगी? तो हम खुद जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि नहीं, ये चीजें बाद की बात है, पहले कहीं और मेहनत करनी पड़ेगी। और जो समझ में आता है वो ये कि इस पॉइंट को एंड पर ले जाने की कोशिश करता हूं, वो ये कि एंड टाइम पर जो इंसान खास फैसले करता है, जो इमाम ने फरमाया था सफाहत वजह फलत आते जबान में जाहिर होता है उसका, वो इंसान है क्रिटिकल टाइम के ऊपर एक झटके में इंसान एक फैसला करता है, सही करता है या गलत करता है मामूलन अंदर के इंसान पर डिपेंड करता है। अगर वो अंदर का इंसान प्योरिफाइड होता है ऐसे किसी मौके पे सही फैसले निकल आएंगे, और खुदा न करे नऊज़ बिल्लाह ताला अगर उस अंदर वाले इंसान के ऊपर मेहनत नहीं हुई तो वो क्रिटिकल टाइम के ऊपर सही फैसले नहीं करवाएगा। तो मुझे समझ में जो बात आती है वो ये कि ऐज़ान मोहतरम, चूंकि हम वक्त के इमाम की तशरीफ़ आवरी के मुंतज़िर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि ये हमारी जिंदगी का एक हदफ है, हमारी जिंदगी का मकसद है, और इस जिंदगी के हदफ और मकसद को हासिल करने के लिए हमें उस अंदरूनी इंसान के ऊपर गैर मामूली तवज्जो देनी पड़ेगी, तो मुझे समझ में आता है कि इसके बगैर कोई रास्ता नहीं होगा हमारे पास कि हम उससे थोड़ा सा कुरेद हैं और उसको देखने के बाद अपने फैसले करें कि बिलाखिर हमारी जो शख्सियत बनती है वो बिलाखिर अहले आखरत बनती है या अहले दुनिया बनती है।